समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आकाशवाणी स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। राजधानी दिल्ली में इस समय तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगह बारिश और ओले गिरने की भी खबर है। मौसम काफी ठंडा हो गया और इसीलिए आज आपको थोड़ा ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है। तो क्यों ना इस खुशनुमा मौसम के साथ आगाज करें कार्यक्रम परिक्रमा का। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून फरहत।
और आज के संख में बहुत कुछ होगा खास, मुख्य समाचार होंगे, डेटलाइन में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के बारे में और आजादी के सफर पर चलेंगे, रुक करेंगे हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं का और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद करेंगे।
राइट फरहत, सो यू वर टॉकिंग अबाउट द वेदर टेकिंग अ टर्न एंड बारिश हो रही है या ओले पड़ रहे हैं, बट यस टिल आफ्टरनून वी वर फेसिंग अ सीवियर अर्ली ऑनसेट ऑफ हीट वेव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, isn't it?
जी बिल्कुल।
And the temperatures were exceeding 45 degrees Celsius in many parts of the north, central and eastern regions. The India Meteorological Department also issued advisories for high-risk regions this time. But the most interesting piece of information today is that India touched an all-time peak power demand without any shortage, and it was solar that stepped up at the most critical hour, supplying nearly 21% of the electricity. This moment underscores a quiet but decisive shift that the sun is no longer just a supplement but a key driver of India's energy resilience. Distributed solar projects such as PM Surya Ghar scheme and many other projects in our country reduce the overall grid consumption and decrease the need for massive centralized infrastructure. Solar electricity has become more affordable with tariffs in India dropping. And solar also serves as an alternative when fossil fuels, oil or gas are scarce, like what we may be facing due to West Asia crisis these days. So they are volatile. So it allows for increased energy independence also. With this positive and encouraging information, let's begin our parikrama for the day with news headlines.
जी अनुजा, हम मुख्य समाचारों से शुरुआत करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तारित श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेसेस नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 इन न्यू दिल्ली, डिस्क्राइब्स पाकिस्तान एज अ सेंटर फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इंडिया एज अ हब ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दुष्कर्म पीड़ितों के 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा।
IMD forecasts heat wave conditions over West Rajasthan for next 3 days।
और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से।
And now, Farhat, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about skilling India for a future-ready workforce. And also, today is International Jazz Day. So we will be talking about some jazz music as well. Beginning with the first Dateline, India is at a pivotal demographic moment with one of the youngest workforces in the world. The country has a significant potential for higher productivity and growing consumer demand. The Economic Survey 2025-26 highlighted that employment-focused skilling initiatives help bridge skill gaps while improving productivity and expanding opportunities for decent work. Such initiatives also promote social mobility by enabling upward economic advancement, thereby supporting more equitable access to inclusive labor markets. Focusing on the potential of young population and realizing the importance of skilling ecosystem, the Union Budget 2026-27 positions skill development as a cross-sectoral priority. It is noteworthy that the recent interventions and initiatives reflect a sustained policy commitment to ensuring that India's young population is not just large in number, but prepared and empowered to contribute meaningfully to the country's economic future.
बिल्कुल अनुजा। और केंद्रीय बजट 2026-27 में संस्थागत क्षमता का विस्तार करने, प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और उभरती औद्योगिक मांगों के अनुरूप कौशल को ढालने के लिए लक्षित पहले शुरू की गई हैं। इन उपायों का उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और शहरी तथा ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर पैदा करना है।
एंड On this, a skilled and educated population is key to realizing India's demographic potential. The Union Budget 2026-27 provides further impetus to the education sector with a total allocation of 1.39 lakh crore rupees. This represents an increase of 8.27% over the budget estimates of 2025-26. The allocation focuses on expanding access, strengthening infrastructure and making education more aligned with industry needs.
और इस दिशा में बजट में प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की भी घोषणा की गई है, जहां विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, साथ ही खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप संबंधी बुनियादी सुविधाओं का उद्यन या स्थापना की जाएगी, जिनमें नेशनल लॉर्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लॉर्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम शामिल हैं, ताकि लोगों को इन विषयों का गहन और जीवंत अनुभव मिल सके।
एंड इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोइंग हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इट इज शेप्ड बाय डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड ग्लोबल डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स पॉइंट टू द नीड फॉर अ स्किल्ड एंड एक्सपैंडेड हेल्थ केयर workforce. In this regard, the budget sets out a phased outlay of 980 crore rupees over 3 years with an aim to expand and strengthen education of allied and healthcare professionals. Key initiatives in the budget include creation and upgradation of institutes, upgradation of existing allied health professionals institutions, formation of a strong care ecosystem and a scheme to promote medical tourism services to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector.
केंद्र बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है, जिससे कुल आवंटन में 1133 करोड़ की वृद्धि हुई है और इस बढ़े हुए आवंटन से केंद्र प्रायोजित खेल और युवा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत का कौशल विकास इकोसिस्टम समन्वित टेक्नोलॉजी आधारित और इंडस्ट्री के अनुरूप फ्रेमवर्क के साथ एक ढांचागत बदलाव से गुजर रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 सेक्टर विशेष कौशल कार्यक्रमों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ जोड़कर इस बदलाव को और मजबूत बनाता है। आईटीआई के अपग्रेडेशन, पीएमकेवीआई 4.0, पीएम सेतु, नाप्स और अन्य सुधारों जैसे पहले सामूहिक रूप से कौशल विकास की पूरी प्रक्रिया में पैमाने, गुणवत्ता, पारदर्शिता और इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है।
एंड एज इंडिया प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स विकसित भारत 2047, द गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग ऑन डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग, मेजरेबल आउटकम्स एंड इंक्लूसिव एक्सेस। ओवरऑल, India's resilient and future-ready skilling ecosystem enhances productivity and accelerates formalization. It also helps translate the country's demographic advantage into broad-based sustainable growth. Now we are moving on to our second dateline topic, which is International Jazz Day. Music lovers all over the world come together today to observe the International Jazz Day. In November 2011, UNESCO proclaimed 30th April as International Jazz Day, recognizing jazz as a force for dialogue, diversity and peace. The story of jazz is written into the quest for human dignity, democracy and civil rights. It has given strength to the struggle against discrimination and racism. International Jazz Day will celebrate its 15th anniversary in more than 190 countries around the world. Chicago in United States of America will host this year's All-Star Global Concert, featuring a record number of artists, including D.D. Bridgewater, Jacob Collier, Kurt Elling, Rennie Fleming, Herbie Hancock, Marcus Miller, and many more.
और बिल्कुल अनुजा, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की अगर बात की जाए तो लोगों के बीच शांति, एकता, संवाद और बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दिन जैज प्रशंसा माह के समापन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वैश्विक संगीत समारोह, शैक्षिक कार्यक्रम और सामुदायिक पहुंच से जुड़े आयोजन भी शामिल हैं। इस दिन का उद्देश्य जैज के गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये एक शैक्षिक साधन होने के साथ साथ शांति, एकता और संवाद को बढ़ावा देने वाली एक सशक्त शक्ति भी है। जैज बाधाओं को तोड़ता है और आपसी समझ और सहिष्णुता के अवसर सृजित करता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक माध्यम है। और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष। और सबसे पहले हम चल रहे हैं रांची, झारखंड के कोयलांचल में, जहां भारत और नेपाल के मूक बधिर खिलाड़ियों ने अपने खामोश गूंज से एक नया इतिहास रचा है। मैदान पर जज्बे और हौसले का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने शारीरिक बाधाओं को पीछे छोड़कर पूरे समाज को प्रेरित किया।
मैदान पर कोई चीख पुकार नहीं थी, न ही कोई शोर शराबा, लेकिन जज्बा ऐसा कि आसमान भी झुक जाए। धनबाद के डिगवाडी स्थित टाटा स्टेडियम में भारत और नेपाल के मूक बधिर जाबाजों ने यह साबित कर दिया कि हुनर का शोर शब्दों का मोहताज नहीं होता। झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य सुनैना सिंह ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए समाज से अपील की कि हम इन प्रतिभाओं को अपनाएं ताकि वे खुद को कभी किसी से कम न समझें।
झारखंड कोयलांचल के अंदर हमारे धरती पे पहली बार ऐसी कोई संस्था और कोई टीम बन करके आई है। न सुन सकते हैं न वो बोल सकते हैं, तो ऐसे लोग अगर अंडर 19 से उभर करके आते हैं, खास करके हमारे कोयलांचल भूमि पे, तो ये बहुत हर्षोल्लास की बात है और ऐसे चीज को और हमारे कोयलांचल के अंदर बढ़ावा दिया जाए।
समारोह का सबसे अनूठा दृश्य वो था जब मैदान पर मौजूद सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ ने मुख्य अतिथि की भावनाओं को अपने हाथों के इशारों से खिलाड़ियों तक पहुंचाया। जवाब में खिलाड़ियों ने अपनी ट्रॉफियां हवा में लहराकर जीत का मौन उत्सव मनाया। इस ऐतिहासिक पल पर आयोजक रवि शेखर की आवाज में गर्व साफ छलका। उन्होंने कहा कि ये जीत उन सभी के लिए जवाब है जो दिव्यांगता को कमजोरी समझते हैं।
अच्छे अच्छे प्लेयर है, ये लोग अंडर 19 तक पहुंचे हैं। दुबई में ये लोग मैच खेलते हैं T20। भारत के 6 स्टेट से 2 प्लेयर, झारखंड के 2 प्लेयर हैं, 1 प्लेयर धनबाद का ही।
टूर्नामेंट के समापन के साथ ही धनबाद के खेल इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है और डिगवाडी की मिट्टी में इन विशेष खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की महक लंबे समय तक बनी रहेगी। धनबाद से दीपक के साथ परिक्रमा के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
Now taking you all to the state of Goa, where Goa has announced the upcoming release of its draft artificial intelligence policy aimed at positioning the state as a hub for responsible AI and applied innovation. Information Technology Minister Rohan Khonte made the announcement at a press conference in Panaji on Wednesday, accompanied by officials, academia and industry representatives. We have more on this from our correspondent.
The draft policy will be published on May 4 on the state portal and IT department website for 15 days of public consultation. The policy focuses on sectors such as health tech, agri tech and fintech while emphasizing safety, accountability and ethical AI development. Key targets include AI certification for all IT and technical graduates by 2028, AI exposure in schools from class 6 and training 50,000 skilled professionals by 2030 with at least 20% participation from women and youth. The government is also developing a Konkani large language model with Bhashini while proposing safeguards for children on social media platforms and measures to address deepfake and harmful content. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
और श्रोताओं, अब आगे चलते हैं, नागपुर की ओर बढ़ते हैं। बुध पूर्णिमा की चांदनी रात में कल चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में आयोजित वन्य प्राणी गणना की जाएगी। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जंगल की दुनिया को करीब से महसूस करने का एक अनोखा अवसर वन्य प्रेमियों को मिलने जा रहा है। विदर्भ के चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में कल अर्थात 1 मई को निसर्ग अनुभव के तहत मचान से वन्य प्राणी गणना आयोजित की जाएगी। इस विशेष अभियान के लिए ताड़ोबा के बफर क्षेत्र में 57 लोहे के मचान तैयार किए गए हैं, जहां प्रत्येक मचान पर 2 प्रगणक पूरी रात बैठकर वन्य जीवों की गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोर क्षेत्र में प्राणी गणना करेंगे। वन्य प्रेमियों के लिए आरक्षित सभी मचानों की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। 1 मई को शाम 4 बजे मचान पर चढ़ने के बाद प्रगणकों को अगले दिन सुबह 7 बजे नीचे उतरना होगा। इस दौरान भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री प्रगणकों को स्वयं साथ ले जानी होगी, जबकि रात में पानी की व्यवस्था ताड़ोबा प्रशासन करेगा। बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात में जंगल और वन्य जीवों का रोमांचक अनुभव लेना इस अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
In fact, Farhad, Budh Purnima is celebrated as a thrice blessed day, which is falling tomorrow, that is on the 1st of May, marking the birth, enlightenment and parinirvan of Gautam Budh, which all traditionally occurred on the same full moon night in the Vaishakh month. Moving on, we are taking you all to Manipur. Manipur is a land where many brave martyrs were born, whose courage and sacrifices continue to inspire generations. In remembrance of their valor, the state solemnly observed Kongjom Day, which is noted annually on 23rd of April, paying rich tributes to the heroes of the Battle of Kongjom. The day marks the Battle of Kongjom, fought on 23rd of April 1891 during Anglo-Manipur War, which represented the final major resistance of the Manipuri kingdom against British imperialism. We have more on this from our Imphal correspondent.
In Manipur, the state-level Kongjom Day was observed on 23rd April 2026 at the Kongjom War Memorial Kebaching, Kongjom in Thoubal district, paying rich tribute to the martyrs who sacrificed their lives for the motherland Manipur during Anglo-Manipur War 1891. The observation was attended by the Governor of Manipur Ajay Kumar Bhalla, Chief Minister Yumnam Khemchand Singh, Deputy Chief Minister Losi Dikho, ministers, MLAs, top civil and police officers and general public. Addressing the gathering, Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla said that Kongjom Day is not only a day of remembrance but also of reflection. He emphasized the importance of unity, self-respect and resilience in the face of challenge. He noted that the sacrifice of the forefather serves as a reminder that freedom and peace must be protected and upheld with responsibility. Sri Bhalla said,
Kongjom Day is not only a day of remembrance, it's a day of reflection. It reminds us of moral strength, of unity, the power of self-respect and the importance of standing firm in the face of adversity.
The observation commenced with Sankirtana, followed by rendition of the national song, national anthem by Manipur Rifles Band. Kongjom Day once again brought the people of Manipur together in remembrance and respect for their heroes. The observance not only honored the sacrifice of the past, but also strengthened the collective resolve to preserve unity, peace and proud legacy of the state. This is Thokchom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नशे की जो लत है वो बेहद बुरी होती है और पूरे घर को खत्म कर देती है, और इसीलिए सरकार समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पुणे में, जहां पर इन दिनों जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता के पास।
पुणे के युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी विषय में ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट और ज्ञान प्रबोधिनी, इन दो संस्थाओं ने हाल ही में शहर में एक सर्वेक्षण किया। इसके आधार पर संयम नाम की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता होने के बावजूद वास्तविक रूप से इसके सेवन का स्तर चिंताजनक है। मित्रों के समूह और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संपर्क, साथ ही साथ लापरवाही के कारण नशे की लत का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए पुणे में ड्रग मुक्त प्रभाग अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा,
हमने जो पिछले 7-8 दिनों से मुहिम चला रखी है, इसमें बहुत बड़ी पैमाने पे सफलता मिलती दिख रही है। कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां उनको काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेज रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो युवक है, एक उनको अवेयरनेस क्रिएट करना और थोड़ी सी उनके मन में एक डिटरेंस भी पैदा होना कि इस प्रकार के विषय पे जीरो टॉलरेंस है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस अभियान में समाज की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए पुणे से मैं माधवी कुलकर्णी।
और अब सीधे चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट की बात सबसे पहले, अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
And in some business news now, benchmark domestic equity indices ended over 0.7% lower today as a hawkish stance by the U.S. Federal Reserve and a spike in crude oil prices weighed on market sentiment. The Sensex dropped 583 points to close at 76,914, while the Nifty lost 180 points to settle at 23,998. The broader market on the National Stock Exchange also closed in a negative zone. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,51,980 rupees per 10 grams, while silver was also trading up at 2,44,480 rupees per kilogram when reports last came in. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं आजादी का सफर का, जहां हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को.
On the 30th of April 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chaki attacked the carriage which they thought was carrying the infamous magistrate Kingsford.
Kingsford was unpopular for passing harsh and cruel sentences on young freedom fighters of Bengal. He was also noted for inflicting corporal punishments on Indians. This led to rage against the magistrate Kingsford. The revolutionary independence activists planned to take revenge.
Prafulla Chaki and Khudiram Bose were chosen for the assassination of Kingsford, who was posted as magistrate in Muzaffarpur. Khudiram Bose and Prafulla Chaki adopted different names to escape the British intelligence officers. Khudiram took the name of Haren Sarkar and Prafulla Chaki disguised himself in the name of Dinesh Chandra Roy. Both the young boys took up residence in a dharamshala. In the ensuing days, Prafulla and Khudiram monitored the activities and daily routine of Magistrate Kingsford. The two revolutionaries successfully hid their identities for over 3 weeks.
Initially, the plan was to throw a bomb in the court, but later it was changed to avoid injuries to civilians present in the court. They decided to attack Kingsford in front of the British Club. Pretending to be schoolboys, they surveyed the park situated opposite the British Club. On the evening of 29th of April, Khudiram and Prafulla were in place to execute their plans. However, on this occasion, they were noticed by a constable.
Fateful day of the 30th of April, 1908, Kingsford and his wife were accompanying the daughter and wife of another British barrister, Pringle Kennedy, in the park. In the evening, the families decided to leave. Kingsford and his wife were in one carriage, and Mrs. Kennedy and her daughter in another. However, the two carriages were identical. As their carriages reached the European Club, Khudiram and Prafulla ran towards the carriage and threw the bombs.
The carriage was shattered, and the Kennedy family sustained terrible injuries. Magistrate Kingsford was lucky to escape the bomb. Khudiram and Prafulla went their own ways to escape capture. While police arrested Khudiram from the Veni railway station in Samastipur district, Prafulla Chaki killed himself before being caught by the police.
Gandhiji shifted to Sevagram Ashram in Wardha on the 30th of April 1934. When Gandhiji started his Padyatra in 1930 from Sabarmati Ashram to Dandi for the salt satyagraha, he had decided not to return to Sabarmati till India attained independence. When Gandhiji was released from prison after 2 years, as India was yet to gain independence, he decided to make a village in central India his headquarters.
He came to Wardha in 1934 at the invitation of Jamnalal Bajaj. On the 30th of April 1936, Gandhiji established his residence in the village Shegaon. There was another village in this region named Shegaon, made famous by the residence of Sant Gajanan Maharaj. So Gandhiji's letters used to get misdirected. We also remember Gopal Singh. Gopal Singh belonged to district Kangra of Himachal Pradesh. He formerly served in the Dogra regiment of the British Indian Army. Gopal Singh voluntarily joined the Indian National Army and served in the infantry group. He was killed on the 30th of April 1946. AIR News salutes the brave nationalist.
And today we also remember another personality who was not just an iconic star, but a timeless artist whose unmatched charm, powerful performances and contribution to Indian cinema continue to inspire generations. Rishi Kapoor, one of Indian cinema's most celebrated stars. He died on 30th of April 2020 at the age of 67 after a prolonged battle with leukemia. His legacy remains immortal in every frame, every song and every heart he touched.
सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, वही दो हाथ दो पांव, आंखें कान चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं, फिर क्यों कोई एक सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है.
दिस वॉज अ डायलॉग इन हिज वॉइस फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग.
जी श्रोताओं, और आपको बता दें कि एक बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी और उन्हें फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया और वहीं साल 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया. ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किया था. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों की ये मेडली.
जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें,
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, आगर किनारे
A true legend, forever celebrated and deeply missed.
और श्रोताओ, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा. भारतीय फुटबॉल के इतिहास में बहुत से इज्जत से नाम उनका लिया जाता है, चुनी गोस्वामी का. इन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में उस भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया जिसने पहली बार एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था. उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और 1983 में पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया.
And today we also pay tribute to Dhundi Raj Govind Phalke, fondly remembered as Dada Saheb Phalke on his birth anniversary today. He is celebrated as the father of Indian cinema, a man of artistic brilliance, visionary thinking and cultural patriotism. Dada Saheb Phalke's contribution to the Indian film industry laid the very foundation upon which Indian cinema stands tall today. Born on this day in 1870 in Maharashtra, Phalke was a multifaceted genius, a painter, a photographer, stage playwright and a magician before venturing into filmmaking. He turned to cinema at a time when the medium was still in its infancy globally and virtually non-existent in India. And what was his ambition? Just to create an indigenous motion picture industry that could reflect Indian stories, myths and values to the masses. In 1913, Phalke made history by directing Raja Harishchandra, India's first full-length silent feature film. Despite facing technical limitations, financial struggles and social resistance, Phalke's determination led to the birth of a cinematic movement that would evolve into one of the world's largest film industries.
बिल्कुल अनुजा, राजा हरिश्चंद्र में जो नायिका ढूंढना था उनके लिए एक बेहद मुश्किल काम हो गया था क्योंकि उस समय कोई भी नायिका और भूमिका के लिए तैयार नहीं थी. इसके लिए उन्होंने एक नाटक मंडली से जुड़ी अभिनेत्रियों से भी बात की, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि कोई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ था. तब हार मानकर उन्होंने एक रसोइयों को चुना, मतलब एक कुक को चुना और उसको जो है वो अभिनय करवाया एक लेडी के तौर पर.
एंड द रिलीज ऑफ राजा हरिश्चंद्र मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा, मेकिंग दादा साहेब फाल्के एन एंड्यूरिंग national icon. Over the span of his career, Dada Saheb Phalke directed and produced more than 95 feature-length films and 26 short films between 1913 and 1937. His works drew inspiration from Indian mythology, folklore and epics, notably the Mahabharata and Ramayana, thereby ensuring that Indian cultural identity remained central to his cinematic efforts. He was not only a filmmaker, but also a trailblazer in technical innovation, mastering cinematography, editing, set design, and even special effects at a time when no formal film schools or institutions existed in India.
बिल्कुल अनुजा, और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.newsonair.gov.in पर। तो इसके साथ ही अनुजा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार,
नमस्कार।